ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमेटी बैठक में अध्यक्ष द्वय के राजनीतिक प्रतिवेदन के ऊपर आज भी हुआ विचार विमर्श। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने रिश्वत लेने के आरोप में किया गुठी संस्थान के प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी और उप प्रशासक जय प्रसाद रेग्मी को गिरफ्तार। कर्नाली प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बेटियों के लिए खुला बैंक में खाता कालीकोट जिले से की इसकी शुरुआत। और इस्लामाबाद की विशेष कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में सुनाई मौत की सजा। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमेटी की आज की बैठक में भी अध्यक्ष द्वाई द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन और महासचिव द्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन लगायत के विषय पर विचार विमर्श जारी रहा। पार्टी केंद्रीय कार्यालय धूमबाराही में हुई बैठक में सरकार और पार्टी के कामों को प्रभावकारी बनाने लगायत के विषय पर 12 स्थायी कमेटी के सदस्यों और 2 आमंत्रित सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे थे। बैठक के बाद संचार कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि राजनीतिक प्रतिवेदन के साथ ही विधान संशोधन लगायत के विषय पर धारणाएं रखते हुए सदस्यों ने संगठन निर्माण के काम को सुदृढ़ बनाने, पार्टी के अंदर की गुटबंदी को खत्म करने, सरकार के कामों को प्रभावकारी बनाने लगायत के सुझाव देने के साथ ही आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की थी। स्थायी कमेटी की बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए पुनः बुलाई गई है। ये जानकारी नेकपा के प्रवक्ता श्रेष्ठ ने दी। महाधिवेशन की तिथि तय करने के विषय को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद प्रभावित नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति की बैठक सुचारू करने के लिए आज भी नेताओं के बीच आंतरिक विचार विमर्श हुआ। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्षधरों द्वारा समिति की बैठक का बार बार बहिष्कार किए जाने के बाद सभी के बीच सहमति जुटाने के लिए कल तक के लिए बैठक स्थगित की गई है। ये जानकारी कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने गुठी संस्थान के प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी और उप प्रशासक जय प्रसाद रेग्मी को रिश्वत लेने के आरोप में आज हिरासत में लिया है। काठमांडू महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित जमीन संबंधी गुठी संस्थान में चल रहे मुकदमे के संबंध में गुठी की जमीन को गुठी में ही कायम करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में प्रमुख प्रशासक चौधरी और उप प्रशासक रेग्मी को अख्तियार ने हिरासत में लिया। ये बात अख्तियार द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। इसी तरह अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रार तुल बहादुर श्रेष्ठ, आर्थिक प्रशासन प्रमुख रूपा सिंघाची अग्रवाल, सीनियर क्लर्क द्वय चंद्र कुमार मगर और रमेश कुमार खतिवड़ा के खिलाफ 5,50,000 रूपये सरकारी रकम अपचलन करने के आरोप में विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया। अख्तियार ने आज ही सार्वजनिक संपत्ति अपचलन करने के आरोप में मालपुत कार्यालय धादिंग के तत्कालीन मालपुत अधिकृत कुश ध्वज खत्री सहित 7 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि विकास निर्माण के कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। बागलुंग में एक कार्यक्रम के बीच उन्होंने ये बात कही। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने कहा कि मूलधार की मीडिया को सत्य तथ्य पर आधारित समाचार संप्रेषण करनी चाहिए। गोरखापत्र संस्थान का अंग्रेजी प्रकाशन द राइजिंग नेपाल के 55वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बासकोटा ने कहा कि सरकार के ऊपर गलत आरोप लगाकर कुछ मीडिया लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। अब वक्त है एक छोटी से व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल ने कहा कि भारत द्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। प्रेस संगठन नेपाल लमजुंग शाखा द्वारा बेसी शहर में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अर्याल ने कहा कि सरकार कूटनीतिक तरीके से नेपाली भूमि को वापस लेने की कोशिश कर रही है। मंत्री अर्याल ने बताया कि सरकार वर्तमान समय में नए नेपाली नक्शा सार्वजनिक करने के बजाय अतिक्रमित भूभाग वापस लेने की ओर केन्द्रित है। कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग कोइका की अध्यक्ष ली मिकयोंग ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच लैंगिक मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए नेपाल और कोरिया सरकार के बीच संभावित साझेदारी के साथ साथ नेपाली नारी का गुणस्तरीय शिक्षा एवं आर्थिक अवसरों में पहुंच आदि विषय पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति भंडारी ने कोरिया को नेपाल का मित्र बताते हुए कोरिया द्वारा नेपाल के आर्थिक विकास में किए गए सहायता और नेपाली युवाओं को रोजगारी अनुमति प्रणाली अंतर्गत रोजगारी का अवसर प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया। कर्णाली प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बेटियों के लिए बचत सहित बैंक खाता खोलने का कार्यक्रम की शुरुआत की है। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजट में सरकार ने बैंक खाता बेटी का सुरक्षा जीवन भर का नामक कार्यक्रम की घोषणा की थी और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाली प्रदेश सरकार ने आज से कालीकोट जिले से की है। ये कार्यक्रम आज से प्रदेश के 10 जिलों में लागू होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 7 करोड़ रुपए विनियोजन किया है। ये जानकारी प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव केवल प्रसाद भंडारी ने दी। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बसनेत ने कहा कि समृद्ध देश बनाने के लिए अच्छे संस्कारों का होना जरूरी है। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बसनेत ने कहा कि अच्छे संस्कारों के जरिए देश का विकास संभव है। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं संविधान सभा के पूर्व सदस्य रामेश्वर प्रसाद ढुंगेल का आज दोपहर निधन हो गया। हृदयघात के बाद सेक्शन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। उनका आज शाम पशुपति आर्यघाट में अंतिम संस्कार किया गया, ये जानकारी पार्टी कार्यालय ने दी। इसी बीच उनके निधन पर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने दुख व्यक्त किया है। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा ने आज से काठमांडू में ट्रैफिक उजाला अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान 3 महीने तक का होगा। ट्रैफिक व्यवस्थापन को सहज बनाने, दुर्घटना न्यूनीकरण करने के लिए सड़क प्रयोगकर्ता, पैदल यात्री, चालक, सहचालक, गैर कॉलेज के विद्यार्थियों को लक्षित कर ये अभियान चलाया गया है। इसकी जानकारी महाशाखा के प्रमुख डीएसपी भीम प्रसाद ढकाल ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इस्लामाबाद की विशेष कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है। मुशर्रफ पर संविधान का उल्लंघन कर साल 2007 में आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया था। मुशर्रफ ने देश में आपातकाल घोषित कर संविधान को निलंबित कर दिया था। जस्टिस वकार सेठ की अध्यक्षता वाली विशेष कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने बहुमत से ये फैसला सुनाया। मुशर्रफ के खिलाफ ये मुकदमा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया था, जब उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2013 में दोबारा सत्ता में आई थी। 6 साल तक चले मुकदमे के बाद न्यायाधीश वकार सेठ ने 3 सदस्यों वाली विशेष सैन्य अदालत का फैसला सुनाया। 2 न्यायाधीशों में से एक ने मौत की सजा के फैसले का विरोध किया। मुशर्रफ अब तक केवल एक ही बार सुनवाई में शामिल हुए हैं, जब उनके खिलाफ आरोप तय हुए थे। अब उनके पास फैसले को चुनौती देने के लिए 30 दिन का वक्त था, मगर इसके लिए उन्हें अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। इस्लामाबाद की विशेष न्यायालय ने 31 मार्च 2014 को देशद्रोह के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व सैनिक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को अभियुक्त बनाया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी बैठक में अध्यक्षद्वय के राजनीतिक प्रतिवेदन के ऊपर आज भी हुआ विचार विमर्श। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने रिश्वत लेने के आरोप में किया गुठी संस्थान के प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी और उप प्रशासक जयप्रसाद रेग्मी को गिरफ्तार। कर्नाली प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बेटियों के लिए खोला बैंक में खाता। कालीकोट जिले से की इसकी शुरुआत। और इस्लामाबाद की विशेष कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में सुनाई मौत की सजा। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।